नमस्कार शिक्षार्थियों और श्रोताओं, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान में आप सभी का स्वागत है। शिक्षार्थियों श्रोताओं, सीनियर सेकेंडरी लेवल के लर्नर्स के लिए आज जो कार्यक्रम हम लेकर आए हैं उसका सब्जेक्ट रहेगा मास कम्युनिकेशन, और जिस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे वो है फोटो पत्रकारिता। इस टॉपिक पर अधिक जानकारी दे रहे हैं श्री सुनील कुमार जी, तो आइए मिलकर सुनते हैं कार्यक्रम फोटो पत्रकारिता।
प्रिय श्रोताओं, आज हम लोग जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो लेखन से थोड़ा अलग है और संचार को व्यापक अस्तित्व में लाने के लिए एक बड़ी भूमिका के तौर पर इसको देखा जाएगा। इसी विषय पर आधारित जो हमारा कार्यक्रम है वह विषय है फोटो पत्रकारिता। और फोटो पत्रकारिता आखिर करता क्या है, पत्रकारिता में फोटो का क्या योगदान रहा है, इन्हीं सभी विषयों को लेकर के हम लोग बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं फोटो पत्रकारिता का, अर्थ जानेंगे इसमें हम लोग उद्देश्यों के तहत। इसके अलावा इन उद्देश्यों में हम लोग जानेंगे कि फोटो पत्रकारिता की प्रकृति और क्षेत्र क्या है। इसके अलावा फोटो पत्रकारिता में संयोजन की महत्वता क्या है, और साथ ही हम लोग चर्चा करेंगे फोटो फीचर तथा फोटो संपादन के बीच में क्या अंतर है। देखिए, मूलतः फोटो पत्रकारिता की जब हम लोग बात करते हैं, जब कैमरा ऑब्स्क्यूरा की शुरुआत नहीं हुई थी या फिर उसका ओरिजिन नहीं हुआ था या उसकी खोज नहीं हुई थी, तो उससे पहले हम लोग पेंटिंग पे भित्रचित्रों के रूप में भारतीय संदर्भ में अजंता और एलोरा की गुफाओं में बने हुए चित्र, भीमबेटका की गुफाओं में बने हुए चित्र, पोर्ट्री पेंटिंग से लेकर के बहुत सारी चीज़ें थी जो कैमरे के आविष्कार यानी फोटो पत्रकारिता का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यहाँ से शुरू होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि मनुष्य ने जो नई चीजें देखी उनके चित्र बनाए या अपनी यात्रा का वृत्तांत लिखा। या तो मनुष्य ने कोई भी चीज आपने और हमने देखी तो हम लोगों को अच्छी लगी, या तो हम लोग उसको लिख लेते हैं या फिर उनके चित्रों को अपने दिमाग में याद में बसा लेते हैं और उनका शब्दों में इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं। लेकिन यात्रा वृत्तांत या फिर जीवनियां लिखी गई और चित्रों के माध्यम से भी बहुत सारी संचार प्रणालियों को अंजाम दिया गया। जैसे मान लीजिए युद्ध के बहुत सारे चित्रों को, बहुत सारे युद्धों के जो दृश्य थे उनको भारत की अलग अलग गुफाओं में, अलग अलग किताबों में देखा जा सकता है। उससे यह पता लगता है कि किस तरीके से युद्ध रणभूमि में युद्ध के दौरान किस तरीके का जो दृश्य है वो क्रिएट रहा होगा। तो उन सबको लेकर के भी बहुत सारे चित्र बनाए गए हैं। मुद्रण लिखी शब्दों को लोगों के बीच में ज्यादा लोकप्रिय कर सकता है। मुद्रित शब्द हाथ से बनी तस्वीरों के साथ होते थे जो बताते थे कि क्या लिखित है। इससे चीजों के बारे में लोगों का ज्ञान बढ़ा तथा जिसके बारे में लिखा गया था उसे वे कल्पना में चित्रित कर सकें। फोटोग्राफी के आगमन के साथ समाचार ज्यादा अधिकार तथा ध्यान आकर्षण के साथ तस्वीर सहित दिए जा सके। फोटोग्राफ ने पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित लिखित समाचारों का सहायक बनना शुरू कर दिया तथा इन प्रकार फोटो पत्रकारिता का जन्म हुआ। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि फोटो पत्रकारिता का जो पत्रकारिता के रूप में फोटो का जो आगमन हुआ उसने पत्रकारिता को आधार ही नहीं दिया और एक अहम केंद्रीय एलिमेंट जिसे हम लोग कहते हैं कि मुख्य जो आधार रहा पत्रकारिता का, वो थोड़े दिनों के बाद में सिर्फ मुद्रित आधारित ना होकर के क्या हो गया, फोटोग्राफ की शुरुआत हो गई। फोटो पत्रकारिता का वहां से जन्म हो गया। अभी वर्तमान में भी आप देखेंगे तो बहुत सारी सूचनाएं यूट्यूब के माध्यम से, बहुत सारी सूचनाएं यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं। अब यहाँ पे शब्द तो चल ही रहे हैं, साथ में उस घटना से संबंधित चित्रों का या फिर वीडियो को हम लोग देख सकते हैं। इससे हम लोग ज्यादा को रिलेट हो सकते हैं। फोटो पत्रकारिता का जो अहम उद्देश्य था, क्योंकि जब उस समय जब ये फोटो पत्रकारिता का आजाद हुआ और अखबार में फोटो दिए जाने लगे समस्याओं के लिए, या फिर किसी विचारशील पुरुष का फोटो या किसी समस्या के को लेकर के फोटो, तो फोटो जब दिए जाने लगे तो थोड़ी सी यथार्थता जो है समाचार पत्रों में आने लगी। फोटो पत्रकारिता का अर्थ थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं और चर्चा कर लेते हैं कि आखिर फोटो पत्रकारिता है क्या। जब हम सुबह उठते हैं, आप मैं या कोई अन्य भी, भले ही आप जब छोटे हैं तो हो सकता है कि अखबार पे एकाएक ध्यान ना जाए, लेकिन जैसे ही आप एक उम्र को क्रॉस करते हैं तो आपका ध्यान सीधे सुबह उठने के बाद में अखबार पे जाता है। इसमें हमेशा प्रथम पृष्ठ पर एक तस्वीर होती है। ज्यादातर अखबारों में आप देखेंगे तो उसके पहले पृष्ठ पर हेडलाइन के साथ में तस्वीर जरूर होगी। बिना हेडलाइन के तस्वीर वाला अखबार आपको नहीं दिखाई देगा। इससे होता क्या है, जो दिन की महत्वपूर्ण खबरों को दिखाती है, ठीक है, इस तरह की तस्वीर फोटो पत्रकारिता का परिणाम है। तब जब से फोटोग्राफी विकसित हुई तथा इसका उपयोग आसान हुआ, यह प्रयोग की दृष्टि से विशेषीकृत होती गई। इससे आप समझ सकते हैं फोटोग्राफी की खोज के बाद जल्द ही लोग हर्षित हो गए तथा अपने फोटोग्राफ लेने में सक्रिय हो गए। जब सक्रिय हुए तो जल्द ही वे कैमरे के साथ यात्रा करने लगे, दूर स्थित जगहों की तस्वीरें लेने लगे तथा इसे उन लोगों को दिखाने लगे जो उन जगहों पर नहीं जा सकते थे। ये एक अमूल चूक परिवर्तन पत्रकारिता में आया कि वह लोग, ऐसे लोग जो फोटो कैमरा लेकर के ऐसे दुर्गम स्थानों पे जा रहे थे और फोटो खींचने के बाद में उन लोगों को दिखा रहे थे जो लोग वहां पे नहीं पहुंच सकते तो यह एक बड़ा मतलब नई बात थी। और पत्रकारिता के माध्यम से जहां अब तक सिर्फ स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता था, शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था, वहां पर क्या होने लगा, अब दृश्य आने लगे। जैसे पहले प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध की जब हम लोग बात करें, उदाहरण के लिए, दुनिया में युद्ध होते रहते थे और आज भी युद्ध हो रहा है। तो देखिए, पुराने युद्धों में और वर्तमान के युद्धों में अंतर यह है कि जो भी कुछ बड़ी निर्मम हत्या कहें या निर्मम रवैया कहें, दो युद्ध में रमे हुए या दो युद्धों में उलझे हुए देशों की सेनाएं जब निर्मम हत्याएं करती हैं तो उसमें क्या होता है, उनके दृश्य को आज फोटो के माध्यम से दुनिया में लाया जाता है। जब वो दृश्य दुनिया के सामने आते हैं तब पता लगता है कि वाकई में युद्ध कितना विध्वंसकारी और विनाशकारी है और समुदायों के लिए, समाज के लिए, सभ्यता के लिए ये इस तरीके की तस्वीरें बता पाती हैं कि वर्तमान में स्थिति क्या होगी। अगर यही समाचार हम लोग सिर्फ शब्दों के माध्यम से बताना चाहें तो शायद उनके अंदर में वो भावनाएं, वो वास्तु स्थिति, वो जो एक तस्वीर जो अपने शब्दों से, अनकहे शब्दों से जो बयां करना चाहते हैं, उस तरह के भाव ना तो आप शब्दों के माध्यम से ला सकते हैं और ना ही उस तरीके के भाव बिना फोटो के आ सकते हैं। तो सन 1980 के लगभग हाफ टोन नामक प्रौद्योगिकी आविष्कृत हुई जिसकी मदद से समाचार पत्रों में फोटोग्राफों का प्रकाशन संभव हुआ। फोटो पत्रकारिता, जैसा कि आज हम जानते हैं, आजकल न्यूज फोटोग्राफी नाम से जानी जाती है। फोटोग्राफ जो किसी समाचार के सहायक होते हैं इस श्रेणी में आते हैं तथा वह फोटोग्राफर जो इस क्षेत्र में विशेषीकृत होते हैं फोटो पत्रकार कहलाते हैं। तो किस किस तरीके के फोटो पत्रकारिता होती है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सी फोटो पत्रकारिता होती है। जैसे सबसे बड़ा जो फोटो पत्रकारिता में स्थान है वो है खेल फोटो पत्रकारिता का। क्योंकि खेल आयोजन समाचारों का एक बड़ा भाग होते हैं, इसमें ऐसे फोटो पत्रकार भी होते हैं जो खेलों के छायांकन के विशेषज्ञ होते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि खेल फोटोग्राफी विशेषीकृत कौशल तथा उपकरणों की मांग करती है। आजकल के फोटो पत्रकार ऐसे भी हैं जो किसी एक खेल के विशेषज्ञ होते हैं। उदाहरण के रूप में भारत में बहुत से फोटोग्राफर हैं जो क्रिकेट फोटोग्राफी को समर्पित हैं, क्योंकि क्रिकेट भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय खेल है जो साल भर दिन हो या रात खेला जाता है। तो बड़ी बात है, और खेल फोटो पत्रकारिता का जो फोटोग्राफी है वो बिना उसके खेल फोटोग्राफी के, खेल पत्रकारिता बिना फोटोग्राफी के संभव नहीं है। दूसरा होता है युद्ध फोटो पत्रकारिता। अब उदाहरण के तौर पर हम लोग समझें तो अफगानिस्तान के युद्ध के दौरान या फिर अन्य देशों के युद्ध के दौरान बहुत सारे पत्रकार वहाँ पे डेप्यूट किए जाते हैं, और वहाँ उनका जो कार्य होता है युद्ध के समय की वस्तु स्थिति को, द रियल पिक्चर ऑफ न्यूज शुड बी सेंट टू द न्यूज पेपर और एजेंसी विच दे आर डेप्यूटेड। तो ऐसी एजेंसीज को हम लोगों को वहाँ तक भेजना है, ऐसे खबरों को पत्रकारों को भेजना होता है, और ये बड़ा ही टीडियस टास्क है। इसके अंदर कई बार पत्रकारों की जान चली जाती है। युद्ध फोटो पत्रकारिता, यह फोटो पत्रकारिता का आरंभिक रूप है, जब फोटो पत्रकार युद्ध कवर करते थे तथा लड़ाई के मैदानों में तस्वीर भेजते थे। भारत में हम समाचार पत्रों में देश के भीतर के संघर्ष जैसे आतंकी गतिविधियों या दंगों की तस्वीर देखते हैं, जहां फोटोग्राफर खतरनाक परिस्थितियों में होते हैं तथा अपने जीवन को खतरे में डालकर हमें तस्वीरें उपलब्ध करवाते हैं। तो इसका एक अपना एक इम्पोर्टेंस है, अपना एक अपना एक स्पेस है। ग्लैमर फोटो पत्रकारिता क्या है? देखिए, फोटो पत्रकारिता में ग्लैमर का जो है बड़ा हिस्सा है। फिल्मी सितारे तथा अन्य प्रसिद्ध व्यक्तित्व खबरों का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं, क्योंकि अधिकांश लोग प्रसिद्ध तथा संपन्न लोगों के जीवन में झांक कर देखना चाहते हैं। अनेक फोटो पत्रकार हैं जो इस तरह की फोटोग्राफी में विशेषज्ञ हैं। इन्हें पापरेजी भी कहा जाता है, जो इटालियन भाषा का शब्द है। तो आपने देखा कि कौन कौन से पत्रकारिता होती हैं, खेल फोटो पत्रकारिता, युद्ध फोटो पत्रकारिता, ग्लैमर फोटो पत्रकारिता, तात्कालिक समाचार फोटो पत्रकारिता। इसका आशय उन घटनाओं को कवर करने से है जिनसे दिन प्रतिदिन की खबरें बनती हैं, जैसे राजनीतिक गतिविधियां, अपराध, दुर्घटनाएं आदि। वस्तुतः यह सर्वाधिक सुलभ तथा सामान्य प्रकार की फोटो पत्रकारिता है, तथा जो फोटो पत्रकार के लिए सबसे ज्यादा मांग वाली भी है। तो इस तरीके से तत्कालीन समाचार में फोटो पत्रकारिता का विशेष महत्व है। यात्रा फोटो पत्रकारिता में एक्सीडेंटल फोटो पत्रकारिता को हम लोग तत्कालिक समाचारों के रूप में देखते हैं। कोई ट्रेन दुर्घटना हो गई, बस का एक्सीडेंट हो गया, इस तरीके से भी हम लोग यात्रा फोटो पत्रकारिता के नाम से जानते हैं। इसके अलावा यात्रा फोटो पत्रकारिता में हम लोग क्या देखते हैं कि बहुत सारे झरनों का या शौकिया या व्यावसायिक दोनों तरह के फोटोग्राफरों द्वारा लिए जाने वाले दृश्य इसमें शामिल होते हैं। शौकिया लोगों द्वारा खींचे हुए फोटोग्राफ इंटरनेट के माध्यम से मित्रों, रिश्तेदारों आदि से फोटो शेयरिंग वेबसाइट द्वारा एक दूसरे को सुलभ उपलब्ध हो जाते हैं। इसके अलावा एक पत्रकारिता का विशेष क्षेत्र है जिसको वन्य जीवन फोटो पत्रकारिता कहते हैं। यह फोटो पत्रकारिता के चुनौतीपूर्ण रूप में से एक माना जाता है। उच्चीकृत फोटोग्राफी उपकरणों के साथ साथ जानवरों के व्यवहार की अच्छी समझ तथा क्षेत्र की समझ वन्य जीवन फोटोग्राफ लेने के लिए आवश्यक है। तो वन्य फोटोग्राफी पत्रकारिता भी इन्हीं फोटोग्राफी पत्रकारिताओं के तहत आने वाला एक 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 रास्ता मान लीजिए, जहां पर भी बहुत बड़ा जो है स्थान वन्य जीवन फोटो पत्रकारिता घेरती है। इसके अलावा फोटो पत्रकार दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला जो समाचार पत्र में वेतनभोगी कर्मचारी होता है, और दूसरा जो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। जैसे जो स्वतंत्र फोटो पत्रकार के रूप में कार्य करते हैं और अपनी तस्वीर समाचार पत्रों तथा समाचार समितियों को बेचते हैं। तो ये कुछ प्रकार थे फोटो पत्रकारिता के, और जिसका जो है अलग अलग डोमेन में हम लोग अलग अलग तरीके की फोटो पत्रकारिता करते हैं, और उनकी अलग अलग अपनी इम्पोर्टेंस है। हर एक डोमेन में पत्रकारिता जरूरी होती है। विज्ञान में भी फोटो पत्रकारिता का अहम योगदान है, क्योंकि बहुत सारे फोटो जो है विज्ञान की लेबोरेटरीज में भी वो खींच के रखते हैं, तो वहां पर भी एक डोमेन फोटो पत्रकारिता का विकसित हो गया है और उधर भी लोग जो है जाना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं अब संयोजन पर। कोई भी तस्वीर खुद बोलनी चाहिए, इस बात पर फोटो पत्रकार का अहम ध्यान होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति फोटोग्राफ देख रहा हो उसे तत्क्षण वह समझ में आ जाए कि फोटोग्राफ क्या कह रहा है, क्योंकि फोटोग्राफ की अपनी भाषा होती है, हर पिक्चर कुछ ना कुछ बयान करती है। इसीलिए इस बात को कहा गया है कि फोटो, जो भी फोटो ली गई हो और हम लोग किसी भी एजुकेटेड या नॉन एजुकेटेड या पढ़े लिखे या अनपढ़ व्यक्ति को अगर वो फोटो दिखाएं, तो उस फोटो के माध्यम से जो भी संदेश वो देना चाह रहा है, जिसके उद्देश्य से वो फोटो ली गई है, उस उद्देश्य की वह पूर्ति कर सके, ये फोटोग्राफी का जो कार्य है। कहा भी गया है एक चित्र 1000 शब्दों की ताकत रखते हैं। ये एक बड़ी बात है कि अगर आप 1000 शब्द आप लिख दीजिए, मान लीजिए कोई युद्ध की स्थिति है और आप युद्ध के परिणामों को लेकर के या युद्ध में हुई भयावह स्थिति को लेकर 1000 शब्द लिख रहे हैं, और वहीं आप दूसरी जगह पर शब्द ना लिख करके एक किसी मृत व्यक्ति की या फिर मतलब जो भी सिचुएशन वहां पे हो उसकी फोटो आप क्लिक करते हैं और आप भेजते हैं, तो क्या होता है? तो ये 1000 शब्दों से भी ज्यादा, लिखित 1000 शब्दों से भी ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। इसका तात्पर्य है कि एक चित्र सरलता से 1000 शब्दों के बराबर संदेशों को संप्रेषित कर सकता है। आपने अनेक फोटोग्राफर देखे होंगे जिनका आप पर गहरा प्रभाव पड़ा है। क्या आपने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए क्योंकि विषय जिसके फोटो खींचा गया उसे इस बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से फ्रेम किया गया कि उसके देखने वाले पर उसका प्रभाव व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा। विषय के इससे समावेश तथा चित्र में फ्रेम में विषय में समावेश को संयोजन कहा जाता है। अब आपसे कोई पूछे कि संयोजन क्या है, तो संयोजन है विषय के इस समावेश या चित्र में फ्रेम में विषय में समावेश को संयोजन कहा जाता है। संयोजन विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होता है जब फोटो पत्रकारिता के लोगों को समाचार सुलभ कराना होता है। यह फोटो खींचने विषयक का समावेशन है जो देखने वाले पर अपना प्रभाव छोड़ता है। जब हम एक परिस्थिति पर विचार करेंगे, अगर हम लोग किसी एक परिस्थिति पर विचार करते हैं जिसमें आपको एक गरीब आदमी का फोटोग्राफ प्रदर्शित करना है, आप सड़क पर भीख मांगते किसी भिखारी की सामान्य फोटो खींचकर अपना संदेश संप्रेषित कर सकते हैं, लेकिन यदि यही फोटोग्राफ इस तरह से लिया जाए कि भिखारी कैमरे के सामने हो तथा पीछे एक संपन्न आदमी कार में बैठा हो, ऐसे में यह चित्र ज्यादा प्रभावशाली होगा, क्योंकि इसका संयोजन दो लोगों के बीच के विरोधाभास को प्रदर्शित करता है तथा गरीब आदमी की परिस्थिति को अमीर आदमी से समझ स्पष्ट करता है। तो देखिए संयोजन का कितना बड़ा कार्य है और संयोजन कितना जो है फायदेमंद है। इसके अलावा जब हम संयोजन की बात करते हैं तो संयोजन से फोटोग्राफ को आंखों के लिए अपील करने वाला बनाया जाता है। युद्ध तथा खेल में एक्शन फोटोग्राफ एक विशेष ऊर्जा का सृजन करते हैं तथा देखने वाला उसे अपने आसपास महसूस भी करता है। संयोजन संतुलन की भी मांग करता है, अर्थात फोटोग्राफ इस तरह से लिया जाए कि देखने पर हमारी आंखें किसी एक हिस्से या कोने में केंद्रित ना हो। विभिन्न विषय इस तरह से संगठित होने चाहिए जिससे तस्वीर का सुखद प्रभाव पड़े। फ्रेमिंग के कुछ सामान्य नियम होते हैं जिसमें से तीसरे का नियम सर्वाधिक सामान्य है। यह नियम स्पष्ट करता है कि फ्रेम में स्थित तत्व इस प्रकार अवस्थित हों कि वे लगभग उन विभाजक लकीरों पर पड़े जो फ्रेम को तीन कॉलम या रो में बांटती है। हालांकि यह अनिवार्य नियम नहीं है, लेकिन यह देख देखने वाले पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ने में कामयाब होता है। तो इस तरीके से संयोजन जो है पूर्ण रूप से यहाँ पे कार्य कर रहा है, हमने और आपने मिलकर ये समझा। इसके अलावा हम लोग अपने नए विषय पर आते हैं और वह है फोटो फीचर तथा फोटो संपादन। अब फोटो फीचर क्या है और फोटो संपादन किस तरीके से कार्य करता है, हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। फोटो फीचर को फोटो निबंध भी कहा जाता है। जैसे हम लोग जब शब्दों पे गाय पे निबंध लिख के लाइए या हाथी पे निबंध लिख के लाइए, अपने गांव के ऊपर एक निबंध लिख के लाइए, बचपन में हम सभी ने निबंध लिखे हुए हैं, तो ऐसे ही फोटो फीचर को फोटो निबंध भी कहते हैं। यानी कि क्योंकि एक फोटो जो है 1000 शब्द के बराबर होता है और एक ही समस्या पे या एक ही वस्तु स्थिति पर हम लोग ज़्यादा फोटो लेते हैं तो उन्हें फोटो निबंध की श्रेणी में हम लोग रख देते हैं। तो जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, यह फोटोग्राफों के माध्यम से किसी विषय पर कहानी या निबंध प्रस्तुत करता है। यह किसी भी विषय, कोई स्थान या व्यक्ति जिसका फोटो खींचा गया हो पर आधारित हो सकता है। आपने पत्रिकाओं में रोचक विषयों पर फोटो फीचर देखे होंगे। एक फोटो पत्रकार फोटो फीचर कैसे तैयार करता है, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। फोटो फीचर सामान्यतः पत्र या पत्रिकाओं के संपादकों की डेस्क पर आकार लेता है और फोटो संपादक इसके बारे में निर्देशित करता है। अब प्रश्न उठता है कि फोटो संपादक कौन है। फोटो संपादक किसी समाचार पत्र या पत्रिका में फोटो विभाग का प्रभारी है। यह फोटोग्राफर का चयन करता है तथा उनके विषय पर चर्चा करता है। वह उस रिपोर्टर का भी चयन करता है जो फोटो निबंध के लिए तैयार या विवरण तैयार करे। यह भी फोटो संपादक का कार्य है कि वह स्थिति को स्पष्ट करने वाले सबसे अच्छे चित्रों का चयन करे। तो आपने समझा और जाना होगा कि आखिर फोटो फीचर सामान्यतः कैसे कार्य करता है। फोटो फीचर के कुछ उदाहरण मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि साथ भोजन करते पूरे परिवार का एक सामूहिक चित्र आपका फोटो फीचर होगा। काम पर जाते पिता, ये भी एक फोटो फीचर होगा। रसोई घर में खाना पकाती माँ, तो स्कूल से घर आती पुत्री, टेलीविजन देखते दादा दादी, तो ये सारे फोटो फीचर के ही उदाहरणों में से एक हैं। और हम लोग अब बात करेंगे फोटो पत्रकारिता की भूमिका क्या है। देखिए, अब आप समझ चुके होंगे कि फोटो पत्रकारिता की रीढ़ फोटो पत्रकार होते हैं। इस बात को समझने में तो कोई दोहराए नहीं है कि हाँ, जो भी फोटोग्राफी होती है वो फोटो पत्रकार उसमें अहम भूमिका निभाता है। लेकिन अभी जो बुनियादी परिवर्तन जो आया है, क्योंकि तकनीक में भी परिवर्तन आया है, तो उसमें हुआ क्या है। देखिए, फोटो पत्रकार जो है पहले जिम्मेदार एक नागरिक था, आज भी वह जिम्मेदार नागरिक है देश का, और वह पत्रकारिता में ऐसे ऐसे फोटोज खींचता है जिन समस्याओं पर समाज की नज़र नहीं जा पाती है, लेकिन कैमरे की नज़र चली जाती है। तो अब तक क्या होता था कि अमूमन समाज के लोग या भारत के लोग या किसी भी देश के लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। कुछ लोगों ने ये जिम्मेदारी ली है कि हाँ, हम लोगों को समाज को ठीक रखना है। तो ऐसे ही फोटो पत्रकारिता के लिए विशेष जो है स्टाफ जो है फोटो पत्रकारिता की रीड फोटो पत्रकार कहलाता रहा है अब तक। लेकिन अभी ध्यान रखिए, जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो यह है कि जब से सिटीजन जर्नलिज्म का, यानी कि पत्रकारिता का जो दौर आया, सिटीजन का मतलब नागरिक पत्रकारिता का जब दौर आया, जब हुआ क्या कि आप अपने मोबाइल फोन से ही फोटो खींच के कोई भी खबर आप भेज सकते हैं, लेकिन खबर जो है ऑथेंटिक होनी चाहिए, आप मतलब यूं ही गलत खबरें ना भेज दें। तो इसमें दो बड़ी बात हुई कि एक तो ये हुई कि फोटो पत्रकारिता में रीड की हड्डी जो है फोटो पत्रकारिता की, वो फोटो पत्रकार रहा है। अब बस थोड़ी थोड़ी सी चेंज हो गई है, सेगमेंट हैज बीन चेंज, कि वो फोटो पत्रकार जो था वो उस एक विशेष व्यक्ति समाज में होता जो था जो फोटो पत्रकारिता करते थे, अब वो शिफ्ट होके कहाँ चला गया है, फोटो पत्रकार नागरिक भी फोटो पत्रकार हो गए हैं। तो ये एक शिफ्ट ऑफ ट्रेंड है, किस तरीके से ट्रेंड ने शिफ्ट किया है तो वो समझ में आता है। इसके अलावा एक अच्छा फोटो पत्रकार, फोटो खींचने वाला है आप कह लीजिए, फोटो पत्रकार कह लीजिए, चाहे वह नागरिक हो, क्योंकि नागरिक जो है नागरिक समस्याओं को लेकर फोटो खींच सकते हैं। कई बार सिटीजन्स ने बहुत बड़ी बड़ी फोटो पत्रकारिता भी की है, जैसे प्लेन के गिरने की और लोगों के बचने की खबर को ट्वीट पे वायरल किया गया है ना। और भी अपने अपनी कंट्रीज में अलग अलग लोग छोटी छोटी वीडियोज बना के खबरों को कर रहे हैं, लेकिन जब युद्ध की बात आती है ना, जब समस्याओं की बात आती है, तो जनरली फोटो पत्रकार ही जो है व्यापक तौर पर कार्य करता है और चीजों को निकाल के लेके आता है। एक अच्छा फोटो पत्रकार कुशल फोटोग्राफर भी होता है, जो कैमरा तथा अन्य उपकरणों का अपने सर्वश्रेष्ठ लाभ हेतु उपयोग करता है। साथ ही उसे मननशील रचनात्मक व्यक्ति भी होना चाहिए, जो तकनीक तथा निर्णायकात्मक के समावेश से तस्वीर घटना घटित होने के साथ ही ले, क्योंकि समाचार हैं घटनाएं फोटोग्राफर का इंतजार नहीं करती। अब देखिए, होता है कि घटना घटी और आप अगर चूक गए फोटो लेने से, तो वह घटना जरूरी नहीं है कि दोबारा आपको मिल जाए, या विशेष समय पर विशेष परिस्थिति में कोई फोटो आपको दिखाई दे जाए जो बहुत ज़्यादा उपयोगी और लाभकारी हो समाज में संदेश देने के लिए। तो अगर आप एक बार क्लिक करने से चूक गए तो आप चूक ही जाएंगे, तो इसीलिए बड़ा ही अलर्ट रहना पड़ता है फोटो पत्रकार को। कुछ फोटो पत्रकार अपने फोटोग्राफ को ज़्यादा रोचक बनाने के लिए तस्वीरों से छेड़छाड़ कर देते हैं। उदाहरण के लिए, लोगों का वांछित फोटोग्राफ हेतु निर्देशानुसार तैयार होना। यह गलत है कि फोटो पत्रकार का मुख्य उत्तरदायित्व तो है कि वह दर्शक को वह तस्वीर दे जो सच्ची हो तथा तो स्वयं में बात स्पष्ट करने वाली हो। तस्वीरों के लिए छेड़छाड़ समाचार खुद गढ़ने जैसा है। यह गंभीरता से कहें तो समाचार नहीं होता, बल्कि कहानी कहना होता है। देखिए, फोटो पत्रकारिता में तस्वीरों के साथ छेड़ने का मामला मुझे लगता है पहले तो कभी नहीं आया, जब फोटो को हम लोग समाचार के लिए यानी अखबारों के लिए प्रयोग करते थे, कम ही छेड़छाड़ के मामले आते थे। लेकिन जब से सोशल मीडिया आया तो फेक न्यूज यानी फोटो फेक फोटोज का कॉन्सेप्ट चलन में आया, कि मतलब फोटो के साथ में बड़े व्यापक तौर पर छेड़छाड़ की गई और उसी के आधार पर टेक्स्ट लिखा गया और लोगों तक पहुंचाया गया ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। तो यहां पर लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं फोटो से भी हटना शुरू हुआ। तो बहुत सारे अखबारों ने कहा कि नहीं, ऐसे कार्य नहीं चल पाएगा, फोटो पत्रकारिता और फोटो जो है अखबारों का एक अहम हिस्सा है, इससे तो अखबार की क्रेडिबिलिटी ही खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया कि जिन भी फोटोज को ट्विटर पे या अखबारों में या समाचार पत्रों में अप्लाई मतलब लगाया गया, यूज किया गया, विशेष तौर पे उस संबंधित फोटो के ऊपर कुछ लिखने से पहले फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स पर यह चेक किया गया, इस बात की प्रतिपुष्टि की गई कि जो फोटो आपको दिया जा रहा है या जो समस्या संबंधी जो फोटो आपको देंगे, क्या वह फोटो सही है या फिर उस फोटो के कंटेंट के साथ में कुछ छेड़छाड़ की गई है। तो ये एक बड़ी बात थी और इस बात को लेकर के दुनिया भर में लोग जो है इकट्ठे, दुनिया भर के समाचार चैनलों के जो काम करने वाले लोग थे या फिर जो सीनियर्स एडिटर्स थे या फिर उनके ओनर्स थे, वो सब लोग उस पर बैठे और इस बात की चर्चा हुई। इसके बाद में हर एक अखबार ने अपनी फैक्ट फाइंडिंग वेबसाइट को डेवलप किया और आज कोई भी फोटो, चाहे वो सिटीजन से के सोर्सेस से आता हो या आपका पत्र, क्योंकि जब आपका पत्रकार खुद का कर रहा है तो उसकी ऑथेंटिसिटी बरकरार है, लेकिन जब सिटीजन से या इधर सोशल मीडिया से तैरता हुआ कोई फोटो या वीडियो आता है तो उसकी जो है चेकिंग आराम से की जाती है और तसल्ली से की जाती है, उसके बाद ही उस न्यूज़ को वायरल या पब्लिश्ड किया जाता है। फोटो पत्रकार के लिए क्या क्या तैयारियाँ होनी चाहिए, अगर आप चाह रहे हैं कि आप एक फोटो पत्रकार बने और अपना करियर फोटो पत्रकारिता में बनाए तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए। देखिए, फोटो पत्रकार यानी कि घटनाएं किसी का इंतजार नहीं करती, विशेषकर फोटो पत्रकारों का। एक फोटो पत्रकार को हमेशा तेजी से सक्रिय होना चाहिए, ये एक इनबिल्ट एबिलिटी है जो किसी भी फोटो पत्रकार के अंदर होनी चाहिए, और वह यह है कि एक्टिव होना चाहिए मेंबर, और उसे हर समय तैयार रहना चाहिए तथा उसका कैमरा सदैव हाथों में ही होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी तुरंत घट सकता है और उसके लिए आप कैमरे को स्टैंड बाई पे रखें तो ज़्यादा बेहतर है ताकि वो तुरंत इस्तेमाल में लाया जा सके। रोचक तस्वीरें प्रायः फोटो पत्रकार की सतर्कता का प्रतिफल होती हैं जो सही समय पर सही जगह पर मौजूद होती हैं। यदि फोटो पत्रकार अपने कार्य के प्रति लापरवाह रहेगा तो वह बहुत सारे महत्वपूर्ण मौके खो सकता है। यह केवल महत्वपूर्ण जगह पर मौजूद होना नहीं है बल्कि सबसे सही जगह पर कैमरा तैयार कर मौजूद होने की बात है। कुछ घटनाएं या आयोजनों की सूचना अग्रिम रूप से फोटो पत्रकार के पास रहती है, अतः वह कार्यवाही शुरू होने से पूर्व वहां मौजूद हो सकता है। उदाहरण के लिए एक सार्वजनिक समारोह या आयोजन जैसे एक खेल आयोजन या राजनीतिक बैठक की पर्याप्त समय पहले ही घोषणा हो जाती है। समाचार पत्रों को स्थान तथा समय के बारे में सूचित कर दिया जाता है। यदि फोटो संपादक को यह पता है कि आयोजन महत्वपूर्ण है तो वह एक फोटो पत्रकार को इसे कवर करने के लिए जिम्मेदारी दे देता है। फोटो पत्रकार वहां पर भागीदारों, दर्शकों, आयोजन स्थल आदि के फोटोग्राफ लेने लगते हैं या लेता है। तो ये जो है एक कंबाइंड प्रयास भी यहाँ समझ में आ रहा है। और लेकिन बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं, ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य है जैसे कि पहले भी बताया, जिसके लिए फोटो पत्रकार पहले से तैयार नहीं होता। आतंकी हमला, दंगा, फसाद, रेल दुर्घटना, भूकंप, पुल का ढहना, सड़क का टूटना, इसके अलावा नदी में बाढ़ आ जाना, ये सारी समस्याएं जो हैं, या कोई महामारी का आ जाना, ये सारी समस्याएं जो है अचानक आती हैं और फोटो पत्रकारों को इसके बारे में नहीं पता होता है। तो इसके लिए भी तैयार होना बहुत ज़रूरी है। यदि कोई फोटो पत्रकार इस तरह की घटनाओं के समय वहां पर मौजूद है तो उसे तुरंत सक्रिय होना होगा और साथ ही अपनी सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी होगी। किसी फोटो पत्रकार के लिए आतंकी हमला, गंभीर दुर्घटनाओं या बड़ी प्राकृतिक आपदाओं को उसी समय कैमरे में कैद करना जब ये घटित हैं दुर्लभ होता है। सामान्यतः यह बाद का समय होता है जिसे कैमरा कैद करता है। अतः फोटो पत्रकार प्रयास करता है कि वह ऐसी तस्वीर उतारे जो घटनाओं को स्पष्ट कर दे। ये घटना भी व्यापकता या भीषणता, उसका लोगों पर प्रभाव एवं घटना स्थल होता है। सर्वश्रेष्ठ तस्वीरें फोटोग्राफर की निर्णय क्षमता तथा संवेदनशीलता का परिणाम होती हैं। तो भैया, सबसे जो बड़ा काम आपको करना है कि आपको अगर फोटोग्राफी में अपना करियर बनाना है तो आपको का जो अलर्टनेस है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और ये भी ध्यान रखिए कि बतौर फोटो पत्रकार जब आप करियर बना रहे हैं तो एक एज के बाद में आपकी उम्र भी ढलेगी, लेकिन आपको कॉन्शियस लेवल जो है ठीक वैसा ही रहना चाहिए जैसा कि है। इसके अलावा हम देखेंगे कि फोटो संपादक कैसे कार्य करता है, क्या काम है फोटो संपादक का। यह चयन उस दिन के महत्वपूर्ण समाचारों से जुड़ा होता है। फोटो एडिटिंग या फोटो संपादक क्या कार्य करता है ना, वह फोटोग्राफ जो लीड समाचार को स्पष्ट करता हो उसका चयन सुनिश्चित होता है। उदाहरण के लिए, यदि दिन का सबसे महत्वपूर्ण समाचार ईंधन के दामों में बढ़ोतरी का है तो पेट्रोल पंप पर ऑटो या ट्रक की लंबी लाइनें लगने का फोटोग्राफ अवश्य प्रकाशित किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उस दिन का मुख्य मुद्दा क्या है, पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, ईंधन के दाम बढ़े हैं, तो ईंधन के दामों पर जो सबसे अहम फोटो है वो एडिटर जो है तय करेगा और उसको वो फोटो लगाना होगा, संबंधित खबर का संबंधित फोटो। चयन का अन्य आधार फोटोग्राफ स्वयं होता है। यदि कोई फोटोग्राफ तीव्र प्रभावी हो या समाचार को स्पष्ट करता हो तो उसके प्रकाशित होने के अवसर बढ़ जाते हैं। उदाहरण के लिए बाढ़ की एक तस्वीर जिसमें केवल मकान की छत ही पानी से ऊपर नजर आ रही हो, उसका प्रभाव उसी बाढ़ का वर्णन करने वाले हजार शब्दों से ज्यादा होगा। बिल्कुल सही। इसके अलावा पाठक को क्या पसंद आएगा, समाचार पत्र के लिए फोटोग्राफ चयन का यह भी आधार होता है। अतः स्थानीय आयोजनों के फोटोग्राफ जैसे अंतर विद्यालय खेल प्रतियोगिता या नए स्कूल भवन का उद्घाटन अक्सर प्रकाशित हो जाते हैं। पाठक को जब फोटो पत्रकार फोटो फीचर पर काम करता है तो अलग कार्यशैली या अलग तरह की तैयारी की आवश्यकता होती है। यदि चित्र व्यक्तियों के हैं तो फोटो पत्रकार में धैर्य होना चाहिए तथा उसे फोटोग्राफ लेने के लिए उनका विश्वास अर्जित करना चाहिए। अधिकांश लोग कैमरा जब उन पर केंद्रित होता है तो सतर्क हो जाते हैं अथवा शर्माते हैं तथा उनका व्यवहार सामान्य नहीं हो पाता। इसीलिए फोटो पत्रकार को इस तरह काम करना चाहिए कि वह जिनके फोटोग्राफ ले रहा है उन्हें उसकी मौजूदगी का एहसास ही ना हो। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि जिनका फोटोग्राफ लेना है उनके साथ फोटो पत्रकार समय बिताए, उनसे बात करें और वे क्या कर रहे हैं तथा फोटोग्राफ के उद्देश्य भी उन्हें बताएं। इस तरह जब फोटोग्राफ लिए जाएंगे तो वे बहुत ज़्यादा फोटो पत्रकार के तात्पर्य के बारे में जिज्ञासु या चिंतित नहीं होंगे तथा कैमरे को अपेक्षित कर सामान्य व्यवहार कर सकेंगे जब कैमरा उन पर केंद्रित होगा। तो बच्चों, आज हम लोगों ने जो बात करी वो बात करी फोटो पत्रकारिता को लेके और फोटो पत्रकार की भूमिका को लेके। नमस्कार।